सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एक्सियम 4 मिशन के सफल लॉन्च और भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं स्पेस आर्किटेक्ट आस्था झाला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4.
आज सचमुच भारत और पूरी दुनिया के लिए गर्व और इतिहास रचने वाला क्षण है, क्योंकि भारत के युवा वायुसेना अधिकारी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की ओर एक अभूतपूर्व कदम बढ़ाया है। हम सभी जानते हैं कि आज दोपहर लगभग 12 बजे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा से एक एक्सियम मिशन लॉन्च हुआ और ये मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अपने 3 अंतरिक्ष सहयोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ओर रवाना हुए और जैसे ही ये अंतरिक्षयान उड़ान भरा, हमने शुभांशु शुक्ला की आवाज भी सुनी और हम तक वो पहुंची कि जिस तरह से उन्होंने अपने कंधे पर तिरंगा लगाया हुआ था और उस पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्होंने भारतवासियों को संबोधित भी किया। तो क्यों ना हम सबसे पहले शुभांशु शुक्ला को ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम गए हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो जय हिंद जय भारत, ये उद्घोष सीधे अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की आवाज में हम सभी देशवासियों और पूरी दुनिया तक पहुंचा। निश्चित रूप से भारत के लिए ये एक बहुत गर्व करने वाला समय है। आइए शुभांशु शुक्ला जी के पिता शंभु दयाल शुक्ला जी को सुनते हैं कि अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला की उड़ान पर उन्होंने क्या कहा।
ये सब उसकी जो है मेहनत का फल है, कितनी मेहनत की है उसने, लगन है, निष्ठा है, अपने काम के प्रति उसने जो है हमेशा दूसरों को पीछे छोड़ा है और आज भी वही हो रहा है। मिशन में जो है उनका चयन हुआ, वो आज जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो हम इस मिशन पर आज कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं और इस मिशन पर चर्चा करने के लिए और साथ में भारत के अंतरिक्ष को लेकर आगे क्या और परियोजनाएं हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं आस्था झाला, जो एक स्पेस आर्किटेक्ट हैं और आका स्पेस स्टूडियो की संस्थापक भी हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले इस मिशन के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं कि किस तरह से ये सफल मिशन भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जिस तरह से एक भारतीय 41 साल बाद अंतरिक्ष की ओर उड़े हैं और साथ ही वो पहले भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। कितनी बड़ी सफलता है भारत के लिए।
ये बहुत ही बड़ी सफलता है हमारे लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 40 सालों के बाद भारत के पास ये मौका आया है इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए। करीबन मिशन रहेगा 14 दिनों का शुभांशु शुक्ला सर का, एंड उसमें वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि हो गया एक माइक्रो एल्गे ग्रोथ जिसमें कि वो स्पिरुलिना का एनालाइज करेंगे ग्रोथ रेडिएशन इफेक्ट, दूसरा हो गया साइनोबैक्टीरिया स्टडी, क्रॉप सीड जर्मिनेशन, मसल रीजनरेशन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। और हमारे लिए उससे भी बड़ी गर्व की बात यह है कि शुभांशु शुक्ला जी इसके पायलट रहेंगे, तो वो बेसिकली जो फाल्कन 9 ड्रैगन क्रू मॉड्यूल है उसको वो डॉक करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से।
जी बिल्कुल, और बहुत सारे शोध आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे ये समाधान हैं उनको तलाशने में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि नासा और इसरो का एक साझा मिशन है, तो ऐसे में जो भारत की रिसर्च है या भारत की जो इंजीनियरिंग और भारत की साइंस है वो किस तरह से और अहम हो जाती है पूरी दुनिया में इस मिशन के बाद, और खासतौर पर जो आप जैसे जो स्पेस आर्किटेक्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कितना बड़ा अवसर इस तरह के मिशन से अपने लिए समझते हैं।
अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इसरो ने सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट एनालॉग मिशन डाला था, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट सिमुलेशन और एनालॉग एस्ट्रोनॉटिक पे पूरा रिसर्च किया था, जैसे कि उनका बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन और काफी सारी चीजें हुई थी उसमें। आगे वाले इसरो के मिशन है गगनयान मिशन, जिसमें कि हमारे दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहेंगे 3 दिन के लिए। उसके बाद हमारा इसरो का ऑल्सो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का भी पूरा वर्किंग उस पर चल रहा है, जो एक भारतीय स्पेस स्टेशन रहेगा। तो शुभांशु जी के अंतरिक्ष जाने से हमें काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक खुद स्पेस आर्किटेक्चर का एक हैबिटेट है, तो जैसे कि वो शुभांशु जी वहां पे रहेंगे तो कैसे वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमारा बॉडी पूरा अंतरिक्ष में कैसे बिहेव करता है माइक्रोग्रेविटी में, हमारा मसल लॉस कैसे रहेगा, फिर वहां स्पेस में फूड की टेक्नोलॉजी है, कैंसर मेडिकल रिसर्च की स्टडी रहेगी, ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली अगर इसको हम लोग एक चीज में मैं बताऊं तो हम लाइफ कैसी रहेगी स्पेस में, तो हमारे जो गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मिशन है वो भी यही है कि हम लाइफ को, जीवन जो है वो पृथ्वी के बाहर हम उसको कैसे लंबे समय तक लेके जा सकते हैं, ताकि हम भविष्य में चंद्रयान पे लैंडिंग कर सकते हैं, मार्स पे लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पूरे इसरो और इंडिया के पूरे स्पेस प्रोग्राम का ये फाउंडेशन बनाने का काम शुभांशु जी कर रहे हैं। तो इससे ना ही सिर्फ साइंटिस्टों को या पूरे देश को फायदा होगा, पर इसको आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होगा, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है, हमने सिर्फ सुना हुआ है कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सब होता है, पर हमने अभी हमारे देश से किसी को एक्सपीरियंस करते हुए नहीं देखा है।
बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगा कि जैसे भारत के अपने जो स्वतंत्र मिशन होंगे, जैसे आपने गगनयान का जिक्र किया और साथ ही अंतरिक्ष मिशन का जिक्र किया, तो ऐसे जो मिशंस हैं वो भारत के अनुसार मॉड्यूल डिजाइन करने के लिहाज से कितने अनुभव वाले होने वाले हैं, खास तौर पर जैसे इस मिशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स सामने आएंगे, तो जब हम अपने मिशन के लिए मॉड्यूल डिजाइन करेंगे तो उसमें कितनी सहायता मिलने वाली है इस मामले में?
हमें इसमें पूरी की पूरी सहायता मिलने वाली है, क्योंकि उसका कारण है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो बेसिकली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ऑलरेडी एक सक्सेस हो चुका है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है उसमें हमें बहुत सारी स्टडी में हेल्प रहेगी, जैसे कि मटेरियल्स स्ट्रक्चर रेडिएशन में कैसे बिहेव करता है, फिर लिमिटेड टेम्परेचर कंट्रोल इनसाइड, फिर ह्यूमिडिटी कैसे रहेगा, फिर इंडोर एटमोसफियर, फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि हम स्पेस में अंतरिक्ष में सब कुछ रिसाइकल करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी सब कुछ रिसाइकल होता है, जैसे कि पानी हो गया, खाना हो गया, वेस्ट सारा रिसाइकल जितना हो सकता है होता है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी हमें वो काम आने वाली है कि रिसाइकलिंग कैसे होता है। फिर अभी रिसेंटली हम सुनते आ रहे हैं कि एग्जाम स्पेस थोड़ा डिले होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थोड़ा सा लीक हो गया था रशियन मॉड्यूल में, तो ये सारी चीजें स्पेस डेब्रिस से हम कैसे हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बचा सकते हैं, लंबे समय तक गाड़ सकते हैं, स्ट्रक्चर से लेके इंटीरियर से लेके सारे एक्सपेरिमेंट से लेके ह्यूमन एग्जिस्टेंस प्रेजेंस तक का पूरा हमें इसमें नॉलेज मिलेगा, तो ये बहुत हिला देने वाला मिशन होने वाला है।
एक और खास बात आस्था जी इस मिशन की ये है कि ये एक कोलैबोरेटिव मिशन है, जैसे एक्सियम स्पेस जो मिशन है इसमें ये निजी भागीदारी भी है, तो अब भारत में भी हम अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप्स और जो कमर्शियल एक पहल है वो देख रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जो भारत के नए इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकते हैं, और खासतौर पर इस तरह के मिशन जिसमें कि भारतीय भी शामिल होते हैं, ना शामिल होते हैं बल्कि उसको लीड करते हैं, तो ऐसे मिशन किस तरह से भारत के जो निजी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अंतरिक्ष में अपनी रुचि रखते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आप जैसे लोग, उनके लिए कितना बड़ा ये बूस्ट होगा?
हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भारत ऑलरेडी ये रास्ते पे चलना शुरू हो गया है, ये भविष्य वाली बात नहीं रही, ये प्रेजेंट वाली बात हो चुकी है, क्योंकि अभी ऑलरेडी भारत में ऐसे रॉकेट बनना भी शुरू हो गए, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस है जो ऑलरेडी पेलोड स्पेस में भेज सकते हैं, वैसे रॉकेट बना रहे हैं, आगे 2-5 साल में वैसे रॉकेट भी हमारे भारत में बनेंगे, जैसे इसरो तो ऑलरेडी बना रहा है जिसमें हमारा गगनयान मॉड्यूल स्पेस में जाएगा, इससे ही हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज बिल्टअप होना शुरू हो रही है। अब जब हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मॉड्यूल ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बिल्टअप हो रही है तो उसके साथ साथ हमारा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी आएगी हमारे आका के साथ साथ। ऑलरेडी यहाँ देश में 2-3 और कंपनियां भी रिसेंटली आई है, जैसे कि अक्षरा लाब्दी है जो भी वो स्पेसएक्स के साथ स्पेस में अपना हैबिटेट डिजाइन करके भेजने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आका के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम भी ये साल इंडिया का सबसे पहला अंडर वाटर हैबिटेट अंडर वाटर एनालॉग ला रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे और ग्रेविटी एक्सपीरियंस स्टिमुलेशन करेंगे जो हमारा ऑन ग्राउंड नहीं हो सकता है और हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हमारा और एडवांस होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी इस पे हम डेवलप करें अंडर वाटर के लिए जो हमारा स्पेस में काम आ सकता है। तो ये हमें भी मॉरल बूस्ट मिलता है कि नहीं आगे भविष्य है स्पेस का क्योंकि स्पेस एक ऐसी इकोनॉमी है कि जिसमें जल्दी रिटर्न नहीं आता है जिसमें जल्दी हम पैसे नहीं बना सकते हैं तो बहुत सारे साल तो रिसर्च में ही जाते हैं तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है और सेल्फ मोटिवेशन हमें तब मिलती है जब हम ऐसे मिशन को देखते हैं ऐसे मिशन को जानते हैं और ऐसे मिशन से हम सीखते हैं।
मैं आपके निजी अनुभवों से ही पूछना चाह रहा था कि जैसे आप एक स्पेस आर्किटेक्ट हैं तो इस बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं कि स्पेस आर्किटेक्ट ये किस तरह की फील्ड है, आप इस फील्ड के तहत क्या करते हैं अंतरिक्ष के लिए।
स्पेस आर्किटेक्ट मतलब आर्किटेक्चर डिजाइन की अच्छी लगने वाली डिजाइन का मतलब नहीं होता है। स्पेस आर्किटेक्चर मतलब उसमें आता है आर्किटेक्चर डिजाइन भी आता है, इंजीनियरिंग भी आता है, साइकोलॉजी भी आता है, फिजियोलॉजी स्टडी भी आता है, उसमें बहुत सारे फील्ड्स एक साथ आते हैं। उसमें हम सबसे पहले तो हमारे देश के सपोज अगर हम देश के लिए डिजाइन करते हैं जैसे कि गगनयान के लिए अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ये समझे कि हमारा मिशन क्या है, हम कितने दिन के लिए स्पेस में जा रहे हैं, कितने दिन तक हमारा हैबिटेट स्पेस में सस्टेन करने वाला है। उसके ऊपर हम समझते हैं कि कितने लोग जाने वाले हैं, जैसे कि 2 एस्ट्रोनॉट हो गए 1 एस्ट्रोनॉट हो गए। उसके ऊपर हम एर्गोनॉमिक एंथ्रोपोमेट्री स्टडी करते हैं कि हमारा बॉडी स्पेस में कैसे बिहेव करेगा, उसकी मोमेंटम क्या होगी। उसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोनॉट है स्पेस में जो जाएंगे वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कौन से पेलोड्स उनके साथ जाएंगे, तो उसके हिसाब से हम उनकी स्पेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि जो स्पेस में हमारा हैबिटेट का एमईपी सिस्टम होगा वो सब कैसे काम करेगा। तो ये पूरा ही स्टार्ट टू एंड तक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैं कहूंगी जो स्पेस आर्किटेक्चर में आता है। और क्योंकि स्पेस आर्किटेक्चर मतलब एक बहुत ही स्पेस हैबिटेट मतलब बहुत एक्सपेंसिव बहुत ही उसमें समय वाली चीज और इंजीनियरिंग लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है, काफी सारा मनी भी जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं एनालॉग्स डेवलप करते हैं। एनालॉग्स क्या होते हैं, वो ऑन ग्राउंड रहते हैं, वो भी एक स्पेस आर्किटेक्चर का पार्टी है जिसमें हम पहले ऑन ग्राउंड सिमुलेशन करते हैं ताकि हम स्पेस हैबिटेट के लिए और एक्यूरेट हो सकते हैं।
हमने देखा भी है कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में किस तरह से चंद्रयान मिशन के तहत अपनी सफलता और अपना झंडा पूरी दुनिया में फहराया है, क्योंकि आप भी आगे आने वाले इस तरह के चंद्रयान मिशन से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं कि क्या परियोजना है, किस तरह से आप जुड़ी हुई है और कैसे आपका योगदान है और कैसे संचालित होगा ये मिशन।
अभी जो चंद्रयान का मिशन है उसमें हमारे रोवर्स का तो लैंडिंग हो चुका है
जी, जी, बिल्कुल।
पर अभी आगे वाले इसरो और बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में जो चंद्रयान पे हम घर कैसे बना सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा काम रहता है एज अ प्राइवेट कंपनी तो हम काम करते हैं डिप्लॉयबल इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर्स मतलब वैसे घर जो हमारे रॉकेट में यहाँ से एक कंप्रेस स्टेज में अनडिप्लॉयड स्टेज में जाए और चंद्र पे पहुंच के वो डिप्लॉय हो जाए मतलब वो बड़े हो जाए और खुल जाए ताकि हमें ज्यादा जगह मिल सके। इससे हम जो पूरे मिशन का कॉस्ट है वो हम डाउन कर सकते हैं
बिल्कुल।
और दूसरा ये रहेगा कि अगर एस्ट्रोनॉट हमारे जाएंगे तो वहां पे जो घर चाहिए होगा उसकी भी डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए भी रिसर्च अभी बहुत तेजी से चालू है
जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस भविष्य के अंतरिक्ष परियोजनाओं की आपने बात की जिसमें चंद्रमा पर हम हैबिटेंट के तौर पर जाने वाले हैं और गगनयान और अंतरिक्ष मिशन जैसे जो बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है उसमें भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जल्द से जल्द हम उनको पूरा करेंगे और जिस तरह से आज की ये उड़ान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच रही है जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में, वो हमें एक और ज्यादा प्रेरणा देगी और प्रोत्साहन देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आप कार्यक्रम में जुड़ी और भारत की सफल अंतरिक्ष यात्रा और आने वाले लक्ष्यों पर आपने विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे एक्सियम 4 मिशन के सफल लॉन्च और भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्पेस आर्किटेक्ट आस्था झाला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में